आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट। कहा, आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने, लोगों के क्षमता निर्माण और सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने के तीन कर्तव्यों से प्रेरित है बजट। बजट में दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी सहित देश के 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा, वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव। प्रदेश भर में आम बजट का किया गया स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 145 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को दर्शाता है यह बजट। और मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति की बैठक की। ओवरलोड वाहनों की रोकथाम, सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय निकायों की व्यवस्था के अनुसार पार्किंग पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने, लोगों की क्षमता निर्माण और सभी को संसाधन सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने के तीन कर्तव्यों से प्रेरित है। एक रिपोर्ट।
बजट में आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य मानकर लोक निवेश पर अधिक बल दिया गया। वित्त मंत्री ने 6 सेक्टर्स में नई पहल के प्रस्ताव किए हैं, जिनमें रणनीतिक क्षेत्र में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म लघु और मध्यम चैंपियन उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त करना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा व स्थायित्व सुनिश्चित करना और शहरी आर्थिक क्षेत्र विकसित करना शामिल है। बजट में प्रदेश के विकास को गति देने वाली कई अहम घोषणाएं की गई है। बजट में दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी समेत देश के 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण का ऐलान किया गया। साथ ही वाराणसी और पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने की घोषणा भी की गई, जिससे अंतरदेशीय जल परिवहन को मजबूती मिलेगी। वित्त मंत्री ने सारनाथ समेत देश के 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का भी प्रस्ताव रखा है। समाचार कच्छ से ओम अवस्थी।
केंद्रीय बजट में रक्षा सेवाओं को सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक 7.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह बजट सुरक्षा, विकास, आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है। वित्त मंत्री ने बजट में भारत को एक वैश्विक जैव औषधि विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए के खर्च के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को शुरू करने का प्रस्ताव भी किया। बजट में आयकर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि संशोधित या देर से रिटर्न दाखिल करने का समय 31 मार्च कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नया आयकर अधिनियम 2025 इस वर्ष अप्रैल से प्रभावी होगा। बजट में शामिल अन्य महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
बजट 2026-27 में खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा के लिए बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। कैंसर रोगियों के लिए आवश्यक 17 दवाओं और औषधियों पर मूल सीमा शुल्क में छूट के साथ 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का भी प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री ने बजट में एमएसएमई को समर्थन देने के लिए आत्मनिर्भरता भारत कोष में 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव रखा। हर जिले में बालिका छात्रावास की स्थापना और महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शी मार्ट्स की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी मार्ग प्रशस्त करता है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट भारत में परिवर्तनों को नवीन ऊर्जा और गति प्रदान करेगा।
भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं, वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं।
रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2026-27 की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह विकसित भारत के लिए रोडमैप तैयार करेगा। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि इस साल रेलवे को 2,78,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है।
7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स की घोषणा की है, चेन्नई बेंगलुरु। इससे चेन्नई और बेंगलुरु के बीच में यात्रा 1 घंटे 13 मिनट की हो जाएगी। बेंगलुरु से हैदराबाद मात्र 2 घंटे की जर्नी रह जाएगी। चेन्नई से हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट की यात्रा रह जाएगी। फिर मुंबई से पुणे मात्र 48 मिनट, पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट। तो एक तरीके से मुंबई पुणे हैदराबाद अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा में कल पेश किए गए आम बजट का प्रदेश भर में स्वागत किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सशक्त घोषणा पत्र है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट देश के 145 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को दर्शाता है।
विकसित भारत की संकल्पना के रोड मैप को लेकर के अपना नया बजट देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया है। जो बजट प्रस्तुत किया गया है यह आम नागरिक को उसके जीवन को सहज और सरल बनाने में मदद करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में यह बजट मददगार साबित होगा। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए ये नए अवसर को प्रदान करने वाला बजट है।
डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि केंद्रीय बजट देश की आधारभूत संरचना को मजबूत करेगा। उन्होंने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा का स्वागत किया।
उन्होंने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर किया जिसमें उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली वाराणसी अब हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मिलेगी और वाराणसी से सिलीगुड़ी मिलेगी। तो निश्चित तौर से इससे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी और तेज होगा। और बायोफार्मा के लिए 10,000 करोड़ का प्रोविजन किया है।
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने बजट का स्वागत किया। वहां के उद्यमी आर के चौधरी ने कहा कि यह बजट वाराणसी के साथ साथ पूरे पूर्वांचल के विकास को गति देगा।
बनारस में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इंडस्ट्री आएंगी, एम्प्लॉयमेंट बनेगा। ये पूर्वांचल अपने आप में एक मानव संसाधन का बड़ा केंद्र है। जो लोग बाहर जाते हैं अब उनको जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ उद्योग लगेंगे। जो रेल कॉरिडोर बन रहा है ये सब औद्योगिक विकास के द्योतक है।
जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर विवेक मिश्रा ने कहा कि बजट में शिक्षा, शोध, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। महिलाओं ने भी बजट का स्वागत किया है। आगरा की डॉक्टर निधि शर्मा ने बजट को ग्रामीण महिलाओं के लिए लाभदायक बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ओवरलोड वाहनों की रोकथाम, सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय निकायों की व्यवस्था के अनुसार पार्किंग सुनिश्चित कराने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंत तक वार्षिक कार्य योजना तैयार कर अप्रूव करा ली जाए, हेडवाइज एलोकेशन शुरुआत से ही सुनिश्चित हो और जिन मदों में आंतरिक संशोधन की आवश्यकता हो उसे समय पर अनुमोदित कराएं ताकि विकास कार्य बाधित ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण में नई तकनीक को अपनाना चाहिए, ऐसे नए प्रयोगों को अपनाया जाए जिनमें सड़क की कॉस्ट कम हो लेकिन लाइफ ज्यादा हो। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
उधर राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रदेश में कुल क्रेडिट डिपॉजिट सीडी रेशियो को 62% से अधिक करने का लक्ष्य रखा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट। कहा, आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने, लोगों की क्षमता निर्माण और सुविधाएं तथा अवसर प्रदान करने के 3 कर्तव्यों से प्रेरित है बजट। बजट में दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी सहित देश के 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा, वाराणसी में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव। प्रदेश भर में आम बजट का किया गया स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 145 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों को दर्शाता है यह बजट। और मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति की बैठक की। ओवरलोड वाहनों की रोकथाम, सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने और स्थानीय निकायों की व्यवस्था के अनुसार पार्किंग पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।